मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज बुधवार है और आज परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत मैं आप सबसे उन शब्दों के अर्थ के बारे में बात करने जा रहा हूं जो परिच्छेद देने के बाद प्रश्नों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक सूचना आपको दे दूं। सूचना यह है कि जब आज का अखबार आपने पलटा होगा तो उसमें हमारे देश में इकोनॉमी में जो एक रिकवरी दिखाई दे रही है उसके बारे में पढ़ने को मिला होगा, और साथ ही साथ तालिबान के साथ जो कतर में हमारे राजदूत हैं उन्होंने जो बातचीत की है उसके बारे में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। कल यदि कोई दूसरी बहुत महत्वपूर्ण घटना या दूसरा समाचार नहीं आया तो इनके बारे में मैं आप सबसे बातें करूंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से इन्हें थोड़ा सा जरूर पढ़ लें, थोड़ा सा जरूर समझ लें। आज मैं इस पर जानबूझकर समय नहीं देना चाह रहा हूं क्योंकि मुख्य विषय के तहत मैं जिस पर बात करने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मैं सीधे सीधे आज के मुख्य विषय पर आता हूं। आप परिच्छेद पढ़ लेते हैं और परिच्छेद पढ़ने के बाद फिर प्रश्न की शुरुआत होती है, और प्रश्न की शुरुआत एक वाक्य से होती है कि ये जो ऊपर का परिच्छेद है इससे क्या अनुगत होता है, जिसे आप इंग्लिश में इन्फर कहते हैं, इससे क्या पूर्व धारणा बनती है जिसे आप एजम्पशन कहते हैं, इसका क्या उपनिगम है, निगमन कह लीजिए उपनिगमन, जिसे आप कोरोलरी कहते हैं, और क्या उपलक्षित होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लाइड होता है। मैंने ये देखा है कि जब स्टूडेंट परिच्छेद के प्रश्नों को हल कर रहे होते हैं तो सामान्यतया ये जो चार पांच तरह के शब्द मैंने आपको बताए हैं इनको एक जैसा मानकर चलते हैं, और जैसे ही आप ऐसा करते हैं गड़बड़ा जाते हैं, और इसका प्रमाण आप खुद अपने व्यवहार के द्वारा ले सकते हैं। बेहतर होगा कि आप लें, मेरी ये बात सुनने से पहले अगर आप कर लेंगे तो शायद ज्यादा आपको लाभ हो सकेगा। आप एक परिच्छेद लें और वही लें जो इससे पहले एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, उस परिच्छेद को पढ़ें, प्रश्न को पढ़ें, चारों विकल्पों को पढ़ें और अपनी तरफ से विकल्प में से सही उत्तर चुन लें, और सोच समझ कर चुने, अनुमान के आधार पर नहीं। क्योंकि देखिए, आप अनुमान के आधार पर चुनेंगे तो उसमें तो आपके दिमाग का कोई रोल नहीं रहा ना, फिर आप अपना मूल्यांकन कैसे करेंगे, वहां तो अनुमान नहीं चलेगा। परीक्षा में कितनों के साथ आप चला पाएंगे तो वहां हार निश्चित है, और अगर आप अनुमान के बावजूद उसको नहीं कर पा रहे हैं, सोचने समझने के बावजूद उसको नहीं कर पा रहे, अनुमान के बावजूद मैं इस रूप में कह रहा हूं कि सोच समझ करके भी अनुमान लगाया जाता है, आप अनुमान ही लगा रहे हैं लेकिन तार्किक रूप से, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, शायद ये भी ना हो, लेकिन इसके होने की संभावना है। लेकिन ये जो आप अनुमान लगा रहे हैं ऐसा नहीं कि आंख बंद करके चार में से एक पर उंगली रख दी और फिर जो आया उसे निशान शामिल कर लिया, नॉट एट ऑल, आप शामिल कीजिए, और इसके बाद अगर वो सही हो जाता है तब तो कोई बात नहीं है, फिर दूसरा उठा लीजिए, और अगर सही नहीं होता है तो अपने ऊपर आप विचार कीजिए, और खासकर इसी बिंदु पर विचार कीजिए कि प्रश्न में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिनकी चर्चा अभी मैंने की कि अनुगत होता है और उपनिगमन होता है, पूर्व धारणा बनती है, क्या आपने इन शब्दों के अर्थों को सही तरीके से समझने के बाद हल किया है, या आप इसे समझ ही नहीं पाए हैं, आपने बस अपने दिमाग में एक बात रख ली कि अच्छा ये पूछा जाता होगा या इसका यह अर्थ होगा तो यह उत्तर हो सकता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको इससे पहले बताया है कि जो बोधगम्यता है वो आसान बात नहीं है, आसान है, आसान बात नहीं है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि आप इसके बारे में ट्रेंड ही हैं, आप इसके बारे में जानते ही हैं और आपको इसके लिए कुछ करने की इसलिए जरूरत नहीं है, नॉट एट ऑल, अभ्यास की जरूरत है। मेरे पास कुछ मेल आए पिछले सप्ताह जब मैंने इसके बारे में बात की थी इस विषय पर, तो मेरे पास कुछ मेल आए और उन मेल्स के अंतर्गत इस समस्या की चर्चा की गई कि सर हम इन शब्दों के अर्थ को सही तरीके से शायद लगता है कि समझ नहीं पाते, इसीलिए जब उत्तर ढूंढते हैं चार विकल्पों में से तो उसमें सभी सही मालूम पड़ते हैं, दो सही मालूम पड़ते हैं और हम सही तक नहीं पहुंच सकते। मुझे लगता है कि जिन्होंने भी इस तरह के मेल लिखे हैं अपनी बात बहुत ईमानदारी के साथ रखी और अपनी समस्याओं को बहुत सही तरीके से पहचाना भी है। तो दोस्तों, यदि सच में आप इनके अर्थों को नहीं जानते तो मुझे लगता है कि तो आज का यह जो मेरा संबोधन है आपके बहुत काम का है और आपको पूरे ध्यान से इसे सुनना चाहिए। मैं कितना बता सकूंगा इसके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन यदि कुछ शेष रह जाएगा तो हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। पहला शब्द है अनुगत। इंग्लिश में इसके लिए है इन्फर, INFER। ये अनुगत क्या है? मुझे लगता है कि 3-4 साल पहले जब परिच्छेद पूछे जाते थे तो उसमें जो प्रश्न होते थे वो काफी कुछ सामान्य किस्म के होते थे, लेकिन अब जो पूछे जा रहे हैं वो उतने सामान्य किस्म के नहीं है, लेकिन बहुत कठिन भी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं शायद यह आपके रास्ते को आसान बना सके। अनुगत, देखिए अनुगत का मतलब क्या हुआ? अनुगत, अनुगत का मतलब है, देखिए आपको परिच्छेद दिया गया है और उस परिच्छेद के अंतर्गत है क्या। सामान्य तौर पर आप ये कह लीजिए कि कुछ सूचनाएं प्रोवाइड कर दी गई हैं, सूचना ही मानेंगे हम। आप एक अनुच्छेद पढ़ते हैं 300-400 शब्द का, तो उसमें सूचनाओं का भंडार है, किसी एक टॉपिक को लेकर के उस टॉपिक के बारे में ढेर सारी सूचनाएं आपको दे दी गई हैं। अब आप उन सूचनाओं को पढ़ते हैं तो इसे आप कह लीजिए कि ये सूचनाएं आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, राइट। और अब आपसे कहा यह जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अब आपसे कहा यह जा रहा है कि ये जो आपको सूचनाएं दी गई हैं इन सूचनाओं के आधार पर आप अपनी कोई राय बनाइए, राय बनाइए अपनी तरफ से कि आप क्या अनुमान लगा सकते हैं, अनुगत कर सकते हैं। उसमें सीधे सीधे उत्तर शामिल नहीं है, जो 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं वो वाक्य शामिल नहीं है, हो सकता है कि वो शब्द भी शामिल ना हो, लेकिन अगर आप उन सूचनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझने के बाद अपनी कोई सही राय बना सकते हैं तो वह वहां है। इसका मतलब यह हुआ कि जो सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उनको आधार बनाकर हम एक राय कायम करते हैं कि अच्छा इसमें यह कहा जा रहा है या यह ऐसा हो सकता है। और हो सकता है जब हम कहते हैं तो ये नहीं कि नहीं भी हो सकता, नहीं, जो हो सकता है आप कह रहे हैं उसके पीछे कारण है। देखिए मेरी बात थोड़ी सी हो सकता है कि आपको थोड़ी दार्शनिक किस्म की दिखाई दे, लेकिन मैं समझाने की कोशिश जो कर रहा हूं सरल तरीके से, आप फिलहाल उस पर केवल ध्यान दीजिए। उदाहरण के तौर पर चलिए मैं एक आपको आपके सामने एक दृश्य रखता हूं। दृश्य भी सूचना है, है? आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, आप यूं कह लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर, चलिए रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इतने में ही एक व्यक्ति आते हैं, है ना, जो थोड़े से मोटे तगड़े से हैं, कुर्ता पहने हुए हैं और धोती पहने हुए हैं, या यूं कह लीजिए कि लुंगी पहने हुए हैं। कुर्ता उनका कत्थई रंग का जो होता है, खासकर उस तरह का है, कत्थई न कहे वो गेरुआ रंग, कह लीजिए गेरुआ रंग का है। माथे पर उन्होंने तिलक लगा रखा है, कंधे पर उन्होंने गमछा डाल रखा है, पैर में उन्होंने खड़ाऊ पहन रखी है, तो वो आदमी है। मैं बहुत ही सरल उदाहरण दे रहा हूं। तो यहां देखिए कि आपको सूचनाएं क्या क्या दी गई कि एक व्यक्ति है जिसने धोती पहन रखी है, गेरुए रंग का कुर्ता पहन रखा है, कंधे पर गमछा डाल रखा है, माथे पर टीका लगा रखा है, है ना, ये सूचनाएं हो गई, दृश्य के रूप में दी जा रही हैं, ये लिखित रूप में भी हो सकती हैं। तो अब आप इस व्यक्ति को देखने के बाद क्या राय बनाएंगे? मेरी समझ से शायद इस उदाहरण से आपको मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अब आपकी राय क्या हुई उस व्यक्ति के बारे में? मान लीजिए कि अब मैं नीचे 4 विकल्प दे देता हूं कि यह व्यक्ति शिक्षक हो सकता है, यह व्यक्ति प्रशासक हो सकता है, यह व्यक्ति पुजारी हो सकता है और यह व्यक्ति, चलिए कुछ भी आप कह लीजिए, दुकानदार हो सकता है, या थोड़ा सा भ्रमित करने के लिए मैं कह दूं कि यह व्यक्ति हलवाई हो सकता है, यह व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। अब ब्राह्मण के साथ में अगर मैं पुजारी कह दूंगा तो फिर तो आपको थोड़ा सा भ्रम में पड़ जाएंगे कि यार मैं ब्राह्मण कहूं या पुजारी कहूं। तो जब ब्राह्मण और पुजारी में आप भ्रमित होंगे तो आप फिर आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कौन सा होगा। ब्राह्मण भी सही हो सकता है, पुजारी भी सही हो सकता है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट कौन सा हो सकता है, दोनों में से सबसे बेहतर कौन सा होगा? तब आप देखिए कि उसमें पूरे के पूरे दृश्य में कहीं भी ब्राह्मण की बात नहीं है, कहीं भी पुजारी की बात नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। आप केवल एक दृश्य देखते हैं और उस दृश्य को देखने के बाद आप अनुमान लगा लेते हैं कि यार ये जो व्यक्ति हैं ये पुजारी होंगे, पंडित होंगे, पुजारी होंगे। आपका अनुमान बिल्कुल सही हुआ। तो दोस्तों यही है अनुगत। अनुमान लगा लेना। आप सामने किसी चीज को देखते हैं, परिच्छेद के अंतर्गत आप किसी चीज को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद आप बता देते हैं कि नहीं नहीं इसमें तो यह है, इसके बारे में मेरी यह राय है, या अपना कोई निर्णय ले लेते हैं या उससे कोई आप निष्कर्ष निकाल लेते हैं, उससे कोई परिणाम निकाल लेते हैं। तो दोस्तों यही है अनुगत। आज मुझे अपनी बात यहीं खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन एक होमवर्क मैं आप सबको देना चाहूंगा और वो यह है कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स निकालें और अनुगत वाले जो प्रश्न हों प्लीज उन पर अभ्यास करने की कोशिश करें, केवल अनुगत जिसमें अनुगत के बारे में कहा गया हो। तो दोस्तों आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में कुछ दोस्तों के नाम हैं। उत्कर्ष गर्ग गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, दीपशिखा चक्रवर्ती हटा मध्य प्रदेश से, सूरज कुमार, जगमोहन गोले और पिंटू राम, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।